نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، مگر اس نقصان سے بچنے کے چار راستے ہیں. پہلی چیز ایمان لے آئے انسان، دوسری چیز ایمان کے بعد عمل صالح کرے یعنی اپنی اصلاح کرے، ایمان کے تقاضے جو بھی ہیں وہ پورے کیے جائیں. تیسرا درجہ ہے وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں، یعنی ہر وہ بات جو دوسرے کے حق میں بہتر ہے، جو چیز اس کو فائدہ دے سکتی ہے وہ بات اس کے سامنے رکھے، اور پھر اس رستے میں اللہ کی بات اس تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں وتواصوا بالصبر، اس پہ صبر کرے. سب کو پتہ ہے کہ سورۃ الاثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اگر صرف سورۃ الاثر ہی نازل فرما دیتے اور پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی. اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ پورا اسلام چار حصوں میں بٹ کے آ جاتا ہے اس کے اندر. تو آج کا یہ میرا چھوٹا سا سیشن جو آپ لوگوں کے ساتھ ہے، یہ بھی اصل میں تواصی بالحق ہے، کہ میں اس مختصر سے وقت کو آپ کے اور اپنے لیے یادگار بنانے کے لیے آپ کو چند ٹپس دینا چاہتی ہوں، اور یاد دہانی اور بعد میں دوسرے سننے والوں کی خاطر یہ بھی بتا دوں کہ آپ سب یہاں ایک نرسنگ کالج میں 4 سالہ نرسنگ کی تربیت لے رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سب کے دل میں جذبے ہیں دوسروں کو سرو کرنے کے، ایسے ہی ہے نا. تو اس موقع پہ جب کہ آپ اپنی اس تعلیم کے دور میں ہیں، یہاں تو آپ کو بہت کچھ یہ کچھ سکھائیں گے نا، میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ حد تک میڈیکل بھی اس میں سکھایا جاتا ہوگا، مریضوں کی ٹیک کیئر، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ظاہری چیزیں انشاءاللہ آپ کا یہ کالج، آپ کے ٹیچرز، آپ کے پرنسپلز آپ کو بہت اچھا سکھائیں گے. اور اس کے ساتھ اگر اس کا تھوڑا سا روحانی پہلو، یعنی مریضوں کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ کیا چیز ہے، اگر یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس وقت میں بتا جاؤں تو ایک تو میرا حصہ ڈل جائے گا. پھر آپ سب جب نرس بنیں گی اور اگر اس میں سے کوئی چیز آپ اپنی زندگی میں رکھیں گی تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نور نلا نور ہو جائیں گی. آج میں نے کیا دیکھا دنیا میں، یعنی مجھے الحمدللہ کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، پاکستان کی حد تک بھی نرسنگ کا پروفیشن جو میں نے سنا، اللہ کا شکر ہے کبھی ڈائریکٹ ہاسپٹلس میں جا کر اس طرح کا کوئی موقع تو نہیں ملا کہ خدمت کروائی جائے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی محفوظ رکھے، لیکن یہ ہے کہ بہت بہت کچھ سنا اس پروفیشن کے بارے میں. پھر اس کے بعد امریکہ اور اسی طرح یورپ کے مختلف کنٹریز میں کچھ لوگ اپنے ایکسپیرئنسز دیتے ہیں، اور جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ وقت جب وہ بیمار ہو یا وہ پریشان ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اس کو ایک بہت زیادہ مخلص اور درد مند انسان کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو صرف اپنے گھروں میں، آپ تو بھی بچی ہیں لیکن آپ کی ٹیچرز اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ بچہ بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کیا چاہتا ہے، اس کو ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے. نیو بورن بیبی بیمار ہو، گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں جاؤ بیٹا تم اس کو لے کے بیٹھو، ہم خود کھانا پکا لیں گے، ایسے ہی ہے نا. تو بیمار انسان جو ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے. اب میڈیکل کا پروفیشن یا آپ کی جو بھی یہاں نرسنگ کی ایجوکیشن ہے، یہ اس کو فزیکلی ٹریٹ کرے گی، مثلاً اس کو اسپرین دینی ہے، اس کو ڈسپرین دینی ہے، کب دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ تو سب کچھ ہوتا ہی ہے. لیکن اگر ایسے وقت میں آپ اپنے دل میں یہ چیز رکھ لیں اس جملے کے بعد کہ اس کو آپ کی طرف سے ایک بہت زیادہ کیئر اور درد مندی چاہیے. دو قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ بہت جلدی آپ کی بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو بھی آپ کہیں اچھی یا بری. ایک تو وہ جو بیمار ہو، مثلاً آپ کسی بیمار کا حال پوچھنے جائیں، کیا حال ہے، آپ کہیں گے وہ مجھے ایک نسخہ پتہ ہے، فوراً کھڑے ہو جائیں گے اس کے کان. اچھا کیا، عموماً ہمارے گھروں میں دیسی ڈاکٹر بھی بڑے ہوتے ہیں جو مریضوں کو دیکھنے جاتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کو मशवरे देते हैं ना, ये पक्की खा लो, ये चूरन खा लो, अदरक खा लो, दालचीनी खा लो, क्योंकि मरीज़ को ये लग रहा होता है कि किसी तरफ से बस मेरी सेहत का कोई सामान बन जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब एक इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, मसलन जेलों में जो लोग हैं, जो किसी भी दुनियावी मुश्किल में हैं, ये लोग बहुत करीब होते हैं अल्लाह को पाने के। तो मैं आप सबसे ये बात कहूँगी कि सबसे पहले तो आप इस प्रोफेशन को चूज़ कर चुके भी हैं तो भी एक दफ़ा अपनी नीयत को चेक करें कि मैंने ये प्रोफेशन क्यों लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से अभी से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस प्रोफेशन में लेकर आने के बाद अब आप इसको मेरी दुनिया और मेरे दीन दोनों की भलाई का ज़रिया बनाएं। लिमिट्स मुकर्रर करें। मैं चंद जनरल बातें करूँगी, कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की है कि औरतें औरतों के साथ और मर्द मर्दों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। ये प्रोफेशन ऐसा होता है कि जिसमें मरीज़ की इंतहाई केयर करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा उसके बहुत पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं। तो अभी से ही इस चीज़ का एहतमाम किया जाए कि आप इंशाल्लाह मैक्सिमम औरतों ही को देखेंगी, और यकीन करें कि औरतों की तादाद दुनिया में वैसे भी ज़्यादा है। तो अगर औरतें औरतों को नर्सिंग करें, मर्द मर्दों को करें, तो बहुत सारे मसाइल वहाँ भी हल हो जाते हैं, क्योंकि इंसान अपोजिट जेंडर के साथ बात करते हुए एकदम केयरफुल हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ ये कि आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे तू इस बंदे के साथ उस वक्त मिला रहा है कि जिसके बाद हो सकता है कि ये मर भी जाए। ऐसे ही ना, देखिए हमारा मुसलमान होने के नाते से ये ईमान है कि कोई बीमारी से नहीं मरता, मौत कभी बीमारी से नहीं आती, वरना तो सब बीमार मर चुके होते और सेहतमंद कभी भी ना मरते, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि बीमारी में इंसान सेहत की निस्बत मौत के ज़्यादा करीब होता है। अब अगर एक शख्स दुनिया से जाने के करीब है या उसका कोई पता नहीं, किसी वक्त भी चला जाए, तो आप फिर कम से कम इन 4 सालों में इतना को दीन ज़रूर सीखें कि आप उन फारिग वक्तों में जब आप भी फारिग हैं या आपको टाइम देना पड़ रहा है अपने मरीजों को, तो उनको छोटी छोटी बातें बताएं, अकीदा छोटा सा, नमाज की बात रोज़, क्योंकि आप देखिए चंद चीज़ें बेसिक्स हैं। और अफसोस के साथ कहूँगी कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हम सब पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारी माँ मुसलमान, हमारी नानी मुसलमान, हमारे बाप दादा नाना सब मुसलमान थे, लेकिन यकीन कीजिए आज कई लोगों को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती। मरीज़ जो होता है ना, उसको तवज्जो चाहिए होती है। अगर आप अपनी ट्रेनिंग्स के साथ ये चीज़ सीख लें कि मरीज़ को अपने ज़हनी तौर पर कैसे मसरूफ़ करना है, आप लोग हॉस्पिटल्स में, मैं खुद इस पर तआवुन करने को तैयार हूँ, छोटी छोटी बुक्स जिसमें बेसिक्स बिल्कुल, उसमें कोई किसी फ़िरका मसक मसलक की बात नहीं। और बेस्ट बुक्स अगर आप मंगाना चाहें तो सऊदी अरब के औकाफ वालों की तरफ से बहुत खूबसूरत छोटी बड़ी बुक्स मिलती हैं, मैं आपको उसका अरेंज भी करवा सकती हूँ, आपको रेफ़र कर सकती हूँ। आप ऐसी छोटी छोटी बुक्स मंगवा कर अपने अपने हॉस्पिटल्स में रखवाएँ, और आप सब बच्चियाँ वो बुक्स अपने सिलेबस में पढ़ चुकी हों पहले, कि मरीज़ को एंटरटेन करते हुए थोड़ा सा किस तरह तरतीब के साथ चलना है, कलमे से बात शुरू करके ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का क्या मतलब है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ हमारा क्या ताल्लुक होना चाहिए, बड़ी छोटी छोटी बातें। और यकीन करें कि वो मरीज़ जो सारा दिन बिस्तर पे कराहता है, आपको मुश्किल होगी, हाय दर्द हो रही है, हाय कभी चीखेंगे, कभी क्रैंकी होंगे, अगर आपने उनको मसरूफ़ कर दिया, वो हॉस्पिटल उनका क्लासरूम बन जाएगा और आप उनकी उस्ताद बन जाएंगी। आप उनको सिर्फ ज़ाहरी तौर पे देखने गई थी, लेकिन आप उनकी रूहानी मुआलजा बन जाएंगी। और जब ऐसे वक्त में एक मरीज़ को सेहत के करीब नहीं है वो, और उस वक्त आप उसको थोड़ा ज़हनी तौर पे मसरूफ़ करें, क्या होता है, मैं आपको एक बिल्कुल मेरी अपनी बहुत ही अच्छी साथी है हमारी कराची में, तो एक जगह पे जहाँ पे हम सभी पढ़ते थे, वो मेरी कुली मतलब कुली की बन गई बाद में कह लीजिए, तो वहाँ वो भी पढ़ने आई। फिर उसके बाद मैंने एक क्लास शुरू की, वो उसमें एज अ स्टूडेंट आई। जो बात बाद में खुली, उस वक़्त तो हमें नहीं पता था, वो कहती हैं कि जिन दिनों में मैं कुरान की तरफ आई तो मेरे ब्रेन में ट्यूमर था, ब्रेन में डॉक्टर्स ने रेफ़र किया कि कोई ऐसा मसला है। अब जहरी बात है, और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हर हफ्ते आपका ट्यूमर बढ़ रहा है। परेशान हुई, और वही बात है कि दुख में रब याद आता है, किसी ने कुरान का रास्ता बताया, मेरी क्लास में आ गई। जब क्लास में आई फिर थोड़ी सी बेतकल्फ़ी हुई, उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने शेयर किया कि पहले मैं जब हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर परेशान था कि आपकी ट्यूमर बढ़ रही है, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरा डॉक्टर हैरान था, कहने लगा कि क्या वजह है कि आप जब आप आ रही हैं और हर 15 दिन, बल्कि फिर 1 महीना, फिर 3 माह पर उनके चेकअप चले गए, डॉक्टर कहते कि आपकी ट्यूमर वहीं रुक गई है, आगे नहीं जा रही। कोई आपने नई चीज़ ज़िंदगी में शुरू की है, तो उसने कहा कि बस मैंने अपने फारिग वक्त को कुरान के साथ मुंसलिक किया है। उसका खुलासा क्या निकला? डॉक्टर ने कहा कि देखिए, पहले आप चूँकि बीमार थी, आप सोचती थी। जब हम सोचते हैं ना, आप भी पढ़ेंगे अपने इस सारे फील्ड में, तो हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन में जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती है ना जिस समय ब्लड की, ब्लड उधर जाता है। चूँकि आप बहुत सोचती थी ना अपने बारे में, तो आपका ब्लड ब्रेन में जाता था और आपकी उस ट्यूमर को खुराक मिलती थी, तो उस ब्लड की वजह से वो बड़ी हो रही थी। अब आप बिजी हो गई हैं, वो वहीं रुक गई। और ये बात थी तब तक जब वो मेरे सामने आ रही थी। फिर मेरी शादी हो गई, मैं अमेरिका चली गई, तो उसके कुछ अरसे के बाद, 3-4 साल बाद जब उनसे मुलाकात हुई, कहने लगे आपको पता कि मेरा ट्यूमर ख़त्म हो गया, क्योंकि कुरान पढ़ के उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी क्लासेस, जेलों में जाना। अब फिर हम मैंने अभी नेक्स्ट वीक कराची उन्हीं के घर में दर्स देना है इंशाल्लाह ताला। तो समझ के आई बात कि मरीज़ को आप मसरूफ़ करते, उसको बोले कि अपने ऊपर रहम नहीं खाओ, अपने ऊपर तरस नहीं खाओ, और बिज़ी कर दें, छोटे छोटे बुकलेट दे दें। आप जैसे गोलियां देते हैं ना हॉस्पिटल में सुबह खानी, अगर डॉक्टर्स हमारे, अब अगला सेशन डॉक्टर से करवा दें, तो डॉक्टर्स अगर मरीज़ की दवाई के अंदर ये शामिल कर दें ना कि भाई आपने ये सुबह में तौहीद के बारे में पढ़ना है और शाम को अपने मामलात के बारे में पढ़ना और इबादत, यकीन करें हमारे आधे हॉस्पिटल बंद हो जाए। इस्लाम में इतनी ताकत है, और अल्लाह ताला ने जो एक इंसान को समझ बूझ दी है ना, उसके तहत हम कम इलाज करके, कम दवाइयां देकर ज़्यादा इलाज कर सकते हैं। एक बात आपने कभी गौर की हो, अभी आप तो छोटी हैं, लेकिन हम सब जो भी सुन रहे हैं इस बात को, नबी सल्लम के दौर में लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? बल्कि रिवायत में आता है कि एक शख्स कहीं से उठा, हकीम था, मदीना में आया, दुकान खोली। क्या सोचा कि यहाँ तो कोई हकीम ही नहीं तो मेरी दुकान बहुत चलेगी। अमूमन तो ऐसे ही होता है, नई चीज़ खुल जाए तो बहुत ही लोग लेते हैं। कुछ दिन गुजरे, महीना गुजरा होगा, कुछ भी वक्त हुआ, मरीज़ ही नहीं आ रहे। एक दिन किसी से बातचीत हुई, कहा तुम लोग बीमार नहीं होते? कहा नहीं, हम नहीं बीमार होते। कहा क्यों? कहने लगे पहली तो बात यह है कि हम नबी सल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर खाते पीते हैं, सुन्नतों पर अमल करते हैं, ईटिंग हैबिट्स हमारी अकॉर्डिंग टू सुन्ना है। दूसरी बात है कि हम पेट में थोड़ी सी जगह रखते हैं। बात समझ गए? 2-3 बातें बताई, उसने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा, कहने लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, चल पड़े। बात समझिएगा, आज क्यों इतनी बीमारियां हैं? मैं इस साल ख़ास तौर पे ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। पहले हमेशा मैं आती थी हर साल में एक दफ़ा आलमोस्ट, तो जो ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सारे एक साल और बड़े हो चुके होते थे, तो पहले अगर घुटने में दर्द था तो अब टखने में भी शुरू हो गया। बूढ़ों के साथ दवाइयाँ बीमारियाँ थी। इस दफ़ा मैंने क्या देखा है, जवान, बूढ़े और बच्चे अक्सर लोग बीमार हैं। अब उसकी वजूहात कौन सी है वो मेरे आपके इस वक्त डिस्कस करने से हल नहीं होंगे वजह, लेकिन ये बात सच है कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के साथ रखेंगे उतना अच्छा होगा। फिर एक छोटी सी टिप ये है कि जब भी आपने अपने मरीज को देखने आना है, ज़ाहिर है वो तो आपकी जॉब होगी ना, अगर आप वॉलंटियरली भी किसी हॉस्पिटल में तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन नियत कर लीजिए किस बात की, कि मैं इस मरीज़ की इयादत समझ लें, मरीज़ को देखना है। आदत वही लफ्ज़ है जिससे ईद है ना, आद याद, बार बार आना, इयादत की नियत कर लीजिए, क्योंकि इस्लाम में इयादत इतना बड़ा अमल है कि हदीस से ये बात पता चलती है कि जब तक कोई किसी मरीज़ के पास जाकर उसको तसल्ली तशफ़ी देता रहे, उसकी इयादत करे, तो वो जन्नत के फलों में से उस वक़्त कुछ खा रहा होता है। तो आप तो फिर इस प्रोफेशन में आकर हर वक्त जन्नत के खाने खाती रहेंगी। लेकिन याद रखिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अपनी नियत की इस्लाह करें। मरीज़ की आदत करना ये आदत ही नहीं, ये इबादत भी है। आप इसको बोझ ना समझें, झुलझलाएं नहीं, और आप याद रखें कि इज्तमाई ज़िंदगी की ज़रूरत है। बाहमी तावन और गमखारी के जज्बे को उभारने का ये एक बहुत खूबसूरत वक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये दीनी हक है कि वो बीमारी में उसका ख्याल रखे और अच्छे तरीके से बात करे। नबी सल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि आदम के बेटे, मैं बीमार था, तूने मेरी आदत क्यों नहीं की? तो बंदा कहेगा, अल्लाह ताला, आप सारी कायनात के रब हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं और आपकी आदत कोई कैसे करता? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला कहेगा, मेरा फलां बंदा बीमार था, तूने उसकी आदत नहीं की, अगर तू उसकी आदत को जाता तो मुझे वहाँ पाता, मुराद यह कि मेरी खुशनूदी, मेरी रहमत को तू पाता। अब ये सही मुस्लिम के रिवायत है। अब आप ज़रा सोचिए, आप तो फिर सारा दिन इस मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं, तो कभी झुंझलाना नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं आना। बस लोग कहते हैं जी नर्सें बड़ी चिड़चिड़ी होती हैं, लेकिन लोग वो भूल जाते हैं कि अपने घर के एक बीमार बूढ़े को देखना संभालना कितनी मुश्किल चीज़ है, तो कहाँ जिनको सारा दिन निभाना पड़े। लेकिन कभी भी आपके मिजाज में बिगाड़ आने लगे तो फ़ौरन उस वक्त ये सोच ले कि नहीं, ये मेरी इबादत है। आप रमज़ान में तरावियाँ पढ़ते हैं या आप हज करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, तो रोते धोते करते हैं, हाय 7 चक्कर क्यों हैं, 3 क्यों नहीं, हाय तवाफ़ इतना लंबा क्यों है, नहीं खुशी खुशी करते हैं ना। लोग तो शबीने के नाम पे सारी रात नफल पढ़ेंगे, तो इबादत करते हुए झुलझलाना नहीं है। तो अगली चीज़ नोट कर ले कि अपना अखलाक नहीं ख़राब करना। आप सोचें ये मजबूर हैं, ये बीमार हैं, ये परेशान हैं, तो मैं अगर ये चिड़चिड़ाऊँगी तो इनको बेचारों को और भी बुरा लगेगा। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक है। पूछा गया वो कौन से हैं, तो उसमें एक हक क्या था कि जब सलाम करे तो उसका जवाब दो, यानी जब मिलो तो सलाम करो, जब तुम्हारी दावत करे यानी एक जायज़ हलाल काम की दावत तुम्हारी वो करे तो उसको कबूल करो, जब मशवरे का तालिब हो अच्छा मशवरा उसको दे दो, जब उसको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो और वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है तो तुमने कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्ला कहो, और उसमें फरमाया कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो और जब मर जाए तो उसके जनाजे में जाओ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है ये भी। तो क्या पता चला, अल्लाह सुब्हान तआला आपको हक अदा करने का मौका दे रहा है। हकूक तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी की एक रिवायत से पता चलता है कि जिसने किसी मुसलमान भाई की इयादत की वो जन्नत के बाला खानों में होगा, यानी हाई राइज, बहुत ऊंचे, जैसे आप कह सकते हैं 5-स्टार होटल 6-स्टार होटल है, या लदबुल मुफरत की रिवायत है। फिर इसी तरह अबू हुरैरा से एक रिवायत है कि जब एक बंदा किसी की आदत करता है और उसकी मुलाकात के लिए जाता है तो एक पुकारने वाला, और ज़ाहिर है कि वो आसमान पे फरिश्ते ही कोई होगा, वो पुकार कर कहता है तुम अच्छे रहे, तुम्हारा चलना अच्छा रहा और तुमने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। चलिए ये तो एक सवाब की बात हो गई, लेकिन इसके बाद फिर अगली चीज़ ये नियत में रखिए कि मुझे इस सारी एक खिदमत के बदले में अल्लाह ताला से अजर और सवाब चूके मिलना है, तो मैंने तकलीफ़ का शिकवा नहीं करना। मसलन नर्सें सारी अपने ऑफिस में बैठी गिले ही करती रहें, फ़लाँ पता है कितना चिड़चिड़ा है, फ़लाँ तो मुझे बार बार बुलाता है, फ़लाँ ने तो मुझे रात को चैन नहीं लेने दिया, नहीं, सब्र और शिकवा, इन्नमा अश्को बसी व हुज़्नी इलल्लाह, इस रास्ते में तकलीफ़ जो आ जाए वो परेशान नहीं होना। आपको था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद दूसरों की आदत करने जाते थे, बीमारों का ख्याल रखते थे। फिर इसी तरह हज़रत आयशा बिनते सईद है, वो कहती हैं कि मेरे बाप ने किस्सा सुनाया कि मैं एक बार मक्के में सख्त बीमार हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए। देखिए कोई इंसान कितना मसरूफ़ हो जाए, कितना मशहूर हो जाए, इंसानी मामलात से वो ऊपर नहीं है, हकूक तो पूरे करने हैं। तो कहते हैं कि जब मेरे पास आए तो मैंने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास काफ़ी माल है और मेरी सिर्फ़ एक ही बच्ची है, तो मैं अपने माल में से 2/3 की वसीयत कर जो और 1/3 माल अपनी बेटी को दे दूँ। तो आपने फरमाया कि नहीं। कहा अच्छा आधे माल की वसीयत कर दूँ? कहा नहीं। आधा लड़की को दूँ? कहा नहीं। कहा फिर क्या है? कहा फिर 1/3 की वसीयत करो और 2/3 बेटी को दो। कुरान में भी ये हुक्म मौजूद है। कहने का मतलब ये था कि जब इयादत के लिए जाएं तो अगली बात है इल्म दें। ये जो मैंने आपको छोटी सी बात शुरू में बताई कि आप उनको बुक्स दें या खुद ज़ुबानी बताएं, बुक्स नहीं भी पढ़ सकते मरीज़, आई एम श्योर आपको इतना इल्म आना चाहिए कि अपनी मीठी ज़ुबान से, प्यार से, हमदर्दी से उसको छोटी छोटी बातें बताएँ कि वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। और वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने उसके बाद उठकर मैं अपना हाथ मेरी पेशानी पर रखा यूँ, फिर मेरे मुंह पर रखा, फिर मेरे पेट पर फेरा और फिर मेरे लिए दुआ की कि अल्लाह साद को शिफा दे। आप भी दुआ कर सकती हैं, ये भी अमल नोट करें, मरीज़ों को दुआ दिया करें। यकीन करें इतना सुकून मिलता है इंसान को जब कोई दूसरा उसके लिए दुआ करता है। तो आपकी दुआ में ये भी दुआ थी कि अल्लाह इनकी हिजरत को मुकम्मल कर दें। कहते हैं इसके बाद से आज तक जब कभी ख्याल आता है मुझे, वो वक्त याद आता है, तो नबी सल्लम के हाथ की ठंडक को अपने जिगर पर महसूस करता हूँ। ये भी अलादबुल मुफरत की रिवायत है। तो मरीज़ के लिए दुआ कर सकते हैं, आप खुद उस आदत डाल लें, यानी आप देखें ना छोटी छोटी दुआएँ। मैंने देखे बाज़ लोग ना परेशान होते, जैसे अब किसी ने आपको कुछ दिया तो आप कहते हैं जजाक अल्लाह खैर, नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने आपको खाना खिलाया, हदीस में आता है उसको दुआ दो अल्लाह मुबारक लहूँ फीमा रज़क़त हूँ वफ़िर लहूँ वरहम हूँ, तो बस लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो मैं कहती हूँ क्या आपको दुआ की ज़रूरत नहीं है? तो दुआएं दें। और एक और बड़ी प्यारी बात है, आप नोट कर सकती हैं कि मरीज़ से क्या आपके लिए दुआ करें। हदीस में आता है और कुरान की भी आयत है, अम्मै युजीबुल मुस्तर इज़ा दाअहू, कौन है जो मुस्तर की दुआ सुनता है जबकि वो उसको पुकारता है। तो देखिए मरीज मुस्तर तो होता ही है ना, बेचैनी है, रात भर जाग रहे हैं, तो जब वो आपसे शिकवा करें तब उन्हें कि नहीं चलें आंटी आप मेरे लिए दुआ करें, चले बस सिस्टर आप दुआ करें, उनसे दुआ कराएं क्योंकि उनकी दुआ आपकी मेरी निस्बत ज़्यादा कबूल होगी। फिर इसी तरह ज़ैद बिन अरकम एक सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी थे, कहते हैं कि एक बार मेरी आंखें ख़राब हो गई, दुखने लगी, अल्लाह के नबी मेरी आदत के लिए तशरीफ़ लाए, कहने लगे कि ज़ैद तुम्हारी आँख में तकलीफ़ है, तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा कि सब्र और बर्दाश्त करता हूँ। आपने फरमाया अगर तुमने अपनी इस तकलीफ़ या दर्द के मुकाबले में सब्र और बर्दाश्त से काम लिया तो इसके सिले में तुम्हें जन्नत नसीब होगी। आप देखिए कि जब आप मरीज़ को ये बात कहेंगी ना कि देखें आंटी अगर आप सब्र करेंगी, सिस्टर आप सब्र करेंगी तो आपको जन्नत मिलेगी, तो वो इंशाल्लाह उसको खुशी से बर्दाश्त करेंगे और आप देखेंगे कि आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। जब मरीज़ मुतमईन हो जाता है तो फिर टेक केयर करने वाले ही थोड़ा सा मुतमईन, अगर मरीज़ सोएगा तो आप भी सो सकते हैं। फिर इसी तरह इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब किसी मरीज़ की इयादत को जाते तो उसके सरहाने बैठते और उसके बाद 7 बार फरमाते, बल्कि मेरा दिल है कि आप सब भी पढ़ें, हम इस वक्त भी इसको पढ़ें। और ये दुआएँ तो वैसे भी, ये आप नर्सेज हैं वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को छींक भी आ जाए या किसी को हल्की सी सर्दी भी लगी देखूँ तो मैं उसके लिए यही दुआ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने किसी मरीज़ के पास 7 बार उसको ये दुआ पढ़ के सुना दी, उसको आपने सुनानी है, तो फरमाया कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। पढ़ेंगे मेरे साथ, दोहरा लीजिए, अस्सलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीमी यशफियक, क्या मतलब है? मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अर्श अज़ीम का रब है कि वो आपको शिफा दे दे। कितना छोटा सा कलमा है, अस्सलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीमी एन यशफियक। तो आप अपने मरीजों को ये भी पढ़ के बताएंगे, फरमाया कि मरीज़ की सिर्फ मौत का अगर वक्त नहीं आया हुआ, इसके अलावा हर बीमारी दूर हो जाती है। तो आप ये छोटी छोटी दुआएं करें, इस पे कार्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं, आदत के बीमार के फ़ोन्स में ऐप मौजूद हैं। फिर आप देखिए कि अक्सर मरीज़ बुखार के मरीज़ होते हैं ना, फीवर बहुत होता है, हर रिएक्शन के ऊपर आपको पता है कि फ़ीवर ही होता है, तो उसके नाते से भी एक हदीस की दुआ है। जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक बूढ़ी औरत के पास गए, उसका नाम उम्म साहिब था, बुखार की शिद्दत से कांप रही थी वो उस वक़्त, तो पूछा गया क्या हाल है, तो उसने ज़रा सबर भला कह दिया, अल्लाह इस बुखार को समझे, इसने मुझे घेर लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुखार को बुरा ना कहो, ये मोमिन के गुनाहों को इस तरह साफ़ करता है जैसे आग की भट्टी से लोहे का जंग दूर हो जाता है। अब आप देखिए अगर आपको ये हदीस याद होगी तो बुखार के मरीज़ को आप बताएंगी ना, तो ख़ुद ब खुद उनका जो है वो दिल ठीक हो जाएगा। एक और बड़ी प्यारी छोटी सी दुआ है, वो भी मेरे साथ दोहरा लें, मरीज़ को देख कर अल्लाह के नबी दुआ करते थे, आप पढ़िए, ला बास तहूरू इंशाअल्लाह। इसका मतलब क्या है कि जब मरीज़ के पास जाएं तो उसको कहें कि गम ना करो, ला बास, अरब लोग वैसे भी बहुत बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना डोंट वरी, इंग्लिश में डोंट वरी है और उर्दू में क्या है, फिक्र ना करो, परेशान ना हो, तो ला बास, घबराने की कोई बात नहीं, तुहूरुन पाक करने वाली है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, यानी ये बीमारी तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगी। तो ये दुआ भी आपको याद होनी चाहिए। और अगर किसी मरीज़ को दर्द हो रहा है, दर्द के भी बहुत सारे मरीज़ आते हैं, तो उसके लिए भी एक दुआ है कि हाथ फेर कर उसके जिस्म पर, मुख्तलिफ दम हैं, मैं सारे इस वक्त आपको बता नहीं सकती, लेकिन एक बस छोटी सी दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बासा रब्बन नासी इश्फिही वान्त शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सकमा। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह इस तकलीफ़ को दूर कर दे, ए इंसानों के रब इसको शिफा अता फरमा, तू ही शिफा अता करने वाला है और तेरे सिवा किसी से शिफा की तवक्को नहीं की जा सकती, और ऐसी शिफा दे कि बीमारी का नाम निशान बाकी ना रहे। मुझे लगता है सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे अगर हमने ये दुआएं पढ़ ली, डॉक्टर्स तो सारे परेशान हो जाएंगे, वो तो आपको निकाल देंगे कि भई आपकी इन दुआओं से तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमारी दवाओं की निस्बत। तो बहरहाल यह है कि इस तरह सुनाओ। फिर दूसरी बात यह है कि एक छोटी सी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे कल्चर के मुताबिक, वो भी आप कर सकती हैं, कि बाज़ दफ़ा एक मरीज़ और 100 साथ उसके खिदमतगार, घर वाले, रिश्तेदार लंबी लंबी बातें करते हैं, तो मरीज़ के पास ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। बातें करना, शोर करना तकलीफ़ होती है। अब आप तो नहीं करेंगी, लेकिन आप देखती हैं कि जो लोग आके बैठे होते हैं, बातें करते हैं, तो किसी भी अच्छे तरीके से आप मैसेज कन्वे उन लोगों को कर सकते हैं कि आप ज़्यादा देर ना बैठिए, इससे मरीज़ को तकलीफ़ होती है। तो ये भी एक खामोश सी दावा हो सकती है, और ये चीज़ अल्लाह के नबी ने सिखाई है, तो मेरे आपके कहने की किसी को ज़रूरत नहीं। आप ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स बनवा के हॉस्पिटल्स में रख सकते हैं कि जो आने वालों को दिए जाएँ, जिससे फिर लोग खुद ब खुद समझ जाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बाज़ दफ़ा एक और चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकती है, और वो क्या है कि जब किसी का हाल पूछा जाए, क्या हाल है, अब आगे से शिकवा शुरू हो जाएंगे, यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ़ है, और ये तो हमारा वैसे भी कल्चर है, कोई हाल पूछ के तो देखे फिर जाए किधर, तो हम इतने शिकवे करने लग जाते हैं। तो आप ऐसे मौके पर जब कोई आपको शिकवे करता दिखाए, तो आप उनको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुना सकती हैं। सूरत अंबिया में भी मौजूद है, 18 साल तक बीमार रहे, और कोई पूछता भी था हाल तो कहते थे मैं ठीक हूँ। बीवी ने सिर्फ इतना कह दिया, इतने साल से बीमार हैं, दुआ क्यों नहीं करते, तो नाराज़ हो गए, कहा इतने साल से अल्लाह ने मुझे सेहत दी हुई थी, तो फिर मैं अब अगर थोड़े देर बीमार हो गया हूँ तो क्या बड़ी बात है। तो मरीज़ को ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना, ऐसी बातें करना, ये है। और फिर मरीज़ों का रुख तवज्जो अल्लाह की तरफ मोड़ना, एक और काम आप नोट कर सकते हैं, 5 नमाजों के वक्त पर मरीज़ को रिमाइंडर देना कि नमाज का वक्त अदा कर लीजिए। देखिए ऐसी चीज़ों के लिए किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप खुद नमाज़ पढ़ती हैं तो मरीज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह से अल्लाह ना करे आपके सामने कोई मरीज़ दम तोड़ने लगे, आपको लग रहा है सांस उखड़ रहे, ऑक्सीजन उसकी जा रही है, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत क्या थी कि आप उस वक़्त एडवाइस करते थे। इवन गैर मुस्लिम था, एक बच्चा यहूदी था, और आप उसकी आदत को गए, ये आपकी खिदमत करता था, जब बीमार हो गया तो आप गए। अब उसका बाप बैठा है, यहूदी शख्स था, जब वो बच्चा आपको देखता है तो अल्लाह के नबी ने उसे क्या कहा कि असलम, मुस्लिम हो जाओ। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा तो बाप ने क्या कहा, अबुल कासिम की बात मान लो, कुन्नियत थी अल्लाह के नबी की, खुद यहूदी था और बेटे को कह रहा है मुसलमान हो जाओ। यहाँ से भी इस्लाम की सच्चाई पता चलती है। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, अल्लाह की शान देखिए कि उसके फौरन बाद उसकी जान निकल गई, अल्लाह के नबी ने उसका कफन दफन करवाया, बाहर बाजार में निकले और खुशी से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने इस लड़के को जहन्नुम की आग से बचा लिया। ये बुखारी की रिवायत है। चूंकि आप तो मुमन मुसलमान लोगों के बीच में ही होंगी, मुस्लिम ही होते हैं, तो आप उस वक्त खुद कलमा पढ़ सकती हैं, मरीज़ को नहीं कहना चाहिए पढ़ें, क्योंकि अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर अल्लाह ना करे कि उसकी कुफर पे मौत हो जाए। फिर इसी तरह वसीयत के छोटे छोटे अहकाम, मरने के बाद क्या कुछ कफन दफन के तरीके हैं, ये सारा एहतमाम हमारे हॉस्पिटल्स के थ्रू किसी भी तरह से हो लेना चाहिए। और इसी तरह से आप देखिए, अगर आप किसी में कोई ख़राबी कमी देखें, बातों ही बातों में उसको बताना चाहिए आपके मामला ठीक हैं, सिस्टर आप किसी से रूठी भी तो नहीं है, छोटी छोटी बातें, क्योंकि आपको पता है कि कतअ रहमी इतना बड़ा गुना है कि बड़ी बड़ी इबादत उसकी वजह से कबूल नहीं होती। कोई कबीरा गुनाह हो का दी था, तौबा की बातें सीखें, आप खुद तौबा पे सीखें और मरीज़ों को तौबा की बात बताएं, क्योंकि हदीस में आता है कि हम पे जो तकलीफ़ आती है ना वो किसी गुनाह की वजह से आती है। माँ साबकुम मुसीबत नीला भी माँ का सबत ही दी कुम, तुम्हें जो मुसीबत आती है वो अपने गुनाहों की वजह से। अब आप मरीज़ को कहते हैं तुम इस्तगफार पढ़ो, शौर से पढ़ो, जब उसने इस्तगफार पढ़ी अल्लाह ने माफ़ कर दिया, उज़र दूर हो गया, तो बीमारी खुद ही दूर हो जाएगी, बग़ैर गोली खाए इंशाल्लाह उसको फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरह से फिर चंद छोटी छोटी बातें करके अल्लाह से ये दुआ करें कि इस पूरे काम के दौरान आपसे कोई गुनाह न सरसद हो। बाज़ दफ़ा बेतकल्फ़ी होने लगती है, दूसरों की गिबत कर रहे हैं, या अगर कोई मरीज़ ऐसा है, कोई मिसाल है कि किसी भी किस्म का कोई मामला होता है, तो आप कोशिश करके अल्लाह ताला की हदों को सामने रखते हुए इस मामले को बेहतर तरीके से करेंगी, अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को कबूल करेगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बरकत दे, और इस छोटे से वक्त में जो बात हमने सीखी सिखाई उसको हम सब की इस्लाह का ज़रिया बना दें। और आप सब का भी बहुत शुक्रिया जो भी इस सारे में माविन हुए, अल्लाह ताला आपकी मेरी नेकी की इस कोशिश को कबूल करे, बल्कि हमें और बरकत भी दे इंशाल्लाह। सुबहानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين. السلام عليكم ورحمه الله.